यीशु मसीह के दुखों का बयान मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के मुताबिक।
पहला मंजर, गिरफ्तारी। जगह, गेतसेमनी बाग। यीशु ये बातें कहकर शागिर्दों के साथ वादी किद्रोन के पार गया, जहां एक बाग था जिसमें वो अपने शागिर्दों समेत दाखिल हुआ, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का गुरुह और सरदार काहिनों और फरीसियों से पयादे लेकर चिरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाकया होने को था आगे बढ़ा और इनसे कहा,
तुम किसे ढूंढते हो?
यीशु नासरी को।
मैं ही हूं।
और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था, और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा,
तुम किसे ढूंढते हो?
यीशु नासरी को।
मैंने तुमसे कह दिया है मैं ही हूँ, बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो।
ये इसलिए हुआ कि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था,
जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया।
तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकुस था, मगर यीशु ने पतरस से कहा,
तलवार मयान में कर, क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है।
दूसरा मंजर, इल्जाम और फतवा। जगह, यहूदियों की मजहबी अदालत। तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के पयादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हन्नान के पास ले गए, क्योंकि वो इस बरस के काहने आजम कयाफा का सुसर था। ये वही कयाफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पत्रस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए, और इस शागिर्द और काहने आजम में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहने आजम के सहन में गया। लेकिन पत्रस बाहर दरवाजा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहने आजम से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पत्रस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पत्रस से कहा,
क्या तू भी उस शख्स के शागिर्दों में से नहीं?
मैं नहीं हूँ।
गुलाम और पयादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर कर खड़े हुए तापते थे, और पत्रस इनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब काहने आजम ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया,
मैंने ईलानिया दुनिया से बातें की हैं, मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है जहां सारे यहूदी जमा होते थे, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? इनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने इनसे क्या कहा है। देख, इनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा।
जब उसने ये बातें की तो उस पर पयादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मारकर कहा,
तू काहने आजम को ऐसा जवाब देता है?
यीशु ने जवाब दिया,
अगर मैंने गलती की है तो इस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है?
और हन्नान ने उसे बंधा हुआ कयाफा काहने आजम के पास भेज दिया, और शमौन पत्रस खड़ा आग ताप रहा था। बस इससे कहा गया,
क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा,
मैं नहीं हूँ।
फिर काहने आजम के गुलामों में से एक ने, जो इस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पत्रस ने उड़ा दिया था, कहा,
क्या मैंने तुझे इसके साथ बाग में नहीं देखा?
तब पत्रस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी। तीसरा मंजर, सलीबी मौत का हुक्म। जगह, पिलातुस की अदालत। तब यीशु को कयाफा के पास से किला में ले गए, और वो सुबह का वक्त था, और वो खुद किला में रहे ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा,
तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो?
अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाले ना करते।
तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवे लगाओ।
हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें।
ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा,
क्या तू यहूदियों का बादशाह है?
यीशु ने जवाब दिया,
तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है?
पिलातुस ने जवाब दिया,
क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है, तूने क्या किया है?
यीशु ने जवाब दिया,
मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं।
तब पिलातुस ने उससे कहा,
क्या तू बादशाह है?
यीशु ने जवाब दिया,
तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है।
पिलातुस ने इससे कहा,
हक क्या है?
ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा,
मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौके पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस तुम चाहते हो कि मैं यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं?
इन सब ने फिर चिल्लाकर कहा,
इसको नहीं बल्कि बराबा को।
और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्घवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आ आकर कहते रहे,
ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम।
और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा,
देखो मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता।
बस यीशु कांटों का ताज रखे और अर्घवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा,
देख ये आदमी।
जब सरदार काहिनों और पयादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा,
सलीब दे सलीब।
तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता।
हमारी एक शरा है और इस शरा के मुताबिक ये कत्ल के लायक है क्योंकि इसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है।
जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा,
तू कहाँ का है?
मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा,
तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दूं?
अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार।
इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे,
अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैरख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है।
पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्शे मुकल्लफ या इब्रानी में जुबत्ता कहलाता है मसनदे अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन छठा घंटा, और उसने यहूदियों से कहा,
देखो अपना बादशाह।
मगर वो चिल्लाए,
ले जा इसे सलीब दे।
क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं?
सरदार काहिनों ने जवाब दिया,
कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं।
तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि इसे सलीब दी जाए। चौथा मंजर, सलीबी मौत। जगह, राहे कलवरी और कलवरी पहाड़। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और इसके साथ दो को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया, उसमें लिखा था,
यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह।
उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा,
यहूदियों का बादशाह ना लिख, ये कि इसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ।
पिलातुस ने जवाब दिया,
मैंने जो लिखा सो लिखा।
जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने इसके कपड़े, जिनको उन्होंने चार हिस्सों में किया, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा और एक चौगा भी लिया। ये चौगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा,
हम इसे ना फाड़ें बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा।
ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है,
वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुर्रा डालते हैं।
बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हलफाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को, इस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था, पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा,
ऐ खतून, देख तेरा बेटा।
फिर शागिर्द से कहा,
देख तेरी माँ।
और इसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने हाँ ले लिया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविष्ता पूरा हुआ, कहा,
मैं प्यासा हूँ।
वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरका में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने सिरका पिया तो कहा,
तमाम हुआ।
और उसने सर झुकाकर जान दे दी।
चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की कि
इनकी टांगे तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत को सलीब पर ना रहें।
क्योंकि सब्बत का दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो इसकी टांगे ना तोड़ी। मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफोर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविष्ता पूरा हो,
उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी।
फिर एक और नविष्ता कहता है,
वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है।
बादजी यूसुफ रामती ने, जो यीशु का शागिर्द था, यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश को ले गया, और निकोदीमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और औद मिला हुआ लाया। और फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन करने के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह के उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और इस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चूंकि ये कब्र नज़दीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया।
हे यरूशलम दियो बेटियों, हे यरूशलम दियो बेटियों, तुसी अपने आप तिवेन करो, तुसी अपने आप तिवेन करो, गुनागारानु जम्मण वालियो औलाद अपनी ते वैण करो। ए यरूशलम दियो बेटियो,
ओ दिन भी
अपने हेठ छुपा छोड़ो, तुस टिब्बियां कोलों बचना है। असा जुल्म ते पाप कमाए ने, असा जुल्म ते पाप कमाए ने,
असा नाल ना कोई रहम करो।
ए यरूशलम दियो बेटियो,
ओ रोज जहान ते
ना जमया दूध पिलाया नहीं शायद ना चंगे रहना है अग हरिया दरख्ता नू लग गई है अग हरिया दरख्ता नू लग गई है शलम दियो बेटियो तुसी अपने आप ते वैण करो तुसी अपने आप ते वैण करो गुनागारानु जमण वालियो औलाद अपनी ते वैण करो